जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवे वेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 22। अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 22। अध्याय 22 श्लोक संख्या 22। सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्य जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम् पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च साश्रद्धया भगवन् धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम् पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च सा श्रद्धया भगवन् धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम् पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। बोलिए।
पुण्याचार्य
वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए सा वह भक्ति श्रद्धया श्रद्धा तथा संकल्प से भगवत धर्म भक्ति चर्यया विवेचना से जिज्ञासया जिज्ञासा से आध्यात्मिक अध्यात्म संबंधी योग निष्ठया आत्मज्ञान में दृढ़ निश्चय से योग ईश्वर भगवान की उपासनया पूजा से च तथा नित्यम नियमित रूप से पुण्य स्रवः जिसके सुनने से कथया विवेचना से पुण्यया पुण्य से च भी अनुवाद मेरे पीछे बोलिए भक्ति करने भगवान के प्रति जिज्ञासा करने जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। इस श्लोक के शब्द कौन बोल रहे हैं, कौन कह रहे हैं? चार कुमार कह रहे हैं। बहुत सोचना पड़ रहा है। चार कुमार कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? पृथु महाराज से कह रहे हैं। चार कुमार पृथु महाराज से कह रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द क्या है? सा। सा शब्द जो है ये स्त्री के लिए है, वह है। सह ये पुरुष के लिए होता है, है? और सा स्त्री के लिए, जैसे अंग्रेजी में ही और शी है ना। तो यहाँ पर सा ये जो है स्त्री के लिए सा है ना। तो सा यानी वो जो है किसके लिए है? पिछले श्लोक में चार कुमारों ने कहा था, सनत कुमार ने कहा था, दृढ़ा रतिर ब्रह्मणी निर्गुणे, निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ा रति है, निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ा रति अगर प्राप्त हो जाए तो असंग आत्म व्यतिरिक्त, तो अपने से अलावा जो कुछ भी वस्तुएं हैं उनसे अपनी विरक्ति अपने आप हो जाएगी है, देहात्म बुद्धि से विरक्ति अपने आप हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि वो कैसे प्राप्त होगी, वो कैसे प्राप्त होगी है ना। तो आज के श्लोक में वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य पूरा नहीं हुआ, तो वो जो निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ा रति है वो कैसे प्राप्त होगी? तो छह विधियां आज के श्लोक में बताएंगे, श्रद्धया श्रद्धा के द्वारा और ये चलता रहेगा लगातार 25वें श्लोक तक, और 25वें श्लोक में फिर वाक्य पूरा होता है। चूंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए प्रभुपाद एक एक श्लोक के तात्पर्य बता रहे हैं, लेकिन वाक्य पूरा होता है श्याण निर्गुणे ब्रह्मणे चांजसा रति ही। तो निर्गुण ब्रह्म में रति स्यात मतलब होगी। तो वाक्य जो है पूरा होता है 25वें श्लोक में, यानी कितने श्लोक हैं ये 22 से लेकर के 25 तक कितने श्लोक हैं, 4 श्लोक, 4 श्लोकों में वाक्य पूरा होता है। और श्रद्धा मानी श्रद्धा के द्वारा, भगवत धर्मचर्या भगवत धर्म की चर्या के द्वारा, तो ये सब जो है विधियाँ हैं जिनका वर्णन सनत कुमार कर रहे हैं है? और सा का मतलब वो स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक है रति, है ना, जैसे प्रेम पुरुषवाचक होता है ना, और रति आसक्ति ये स्त्रीवाचक हैं। तो चार कुमार या सनत कुमार वो बोल रहे हैं कि वो जो निर्गुण ब्रह्म में रति है वो कैसे प्राप्त होगी। तो 6 विधियां बतलाई हैं। पहली विधि क्या है, श्रद्धया। तो श्रद्धा के द्वारा जैसे आदो श्रद्धा हम लोग बोलते हैं ना, रूप गोस्वामी ने बताया है कि सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रद्धया। फिर दूसरी विधि क्या है, भगवत धर्मचर्या। भगवत धर्मचर्या भगवान को जो प्रिय नियम है उनका पालन करने से भगवत धर्मचर्या। फिर जिज्ञासया, जिज्ञासा करने से। तो इन सब विधियों के द्वारा क्या प्राप्त होती है, निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ा रति। जिज्ञासया, फिर आध्यात्मिक योग निष्ठया, आध्यात्मिक योग की निष्ठा के द्वारा। तो ये सब आपको अभ्यास करना, इन चीजों का अभ्यास करना है। योगेश्वर उपासना, योगेश्वर की उपासना के द्वारा। तो योगेश्वर जो है प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, 2 अर्थ हैं, एक तो भगवान के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग होता है और दूसरा भक्तों के लिए भी योगेश्वर शब्द का प्रयोग होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद चर्चा करेंगे। योगेश्वर उपासनया च नित्यम, नित्यम ये नित्यम शब्द सब में लगाया जा सकता है। और नित्यम शब्द का प्रभुपाद अनुवाद लिखते हैं नियमित रूप से, नियमित रूप से प्रतिदिन, प्रतिदिन आप ये इनका अभ्यास करिए। नित्यम का 24 घंटे भी होता है, लेकिन 24 घंटे तो वो व्यवहारिक नहीं है। नित्यम का मतलब है कि कुछ ये जो विधियां हैं जिनका आपको प्रतिदिन पालन करना है, तो नित्यम का मतलब नियमित रूप से पालन करना है बिना नागा के। नित्यम नित्यम पुण्य श्रवा कथया पुण्याचा, और पुण्य श्रवा भगवान को कहते हैं जिनका यश पवित्र है, इसलिए उनको पुण्य श्रवा, पुण्य श्रवा कहा जाता है। तो पुण्य श्रवा यानी भगवान की पवित्र कथाओं के द्वारा। तो 6 विधियां आज के श्लोक में सनत कुमार बता रहे हैं, है ना। पहली विधि क्या है, श्रद्धा के द्वारा, और वो भी नित्यम प्रतिदिन हम जो है श्रद्धा का अभ्यास करें। फिर भगवत धर्मचर्या, भगवान के जो प्रिय नियम हैं उनका पालन करें, वो भी नित्यम करें। फिर जिज्ञासया, जिज्ञासा भी करें, तो नित्यम जिज्ञासा करें, प्रतिदिन जिज्ञासा करना चाहिए। आध्यात्मिक योग निष्ठया, आध्यात्मिक योग की निष्ठा का भी अभ्यास हमें करना है, प्रतिदिन करना है। योगेश्वर उपासनया, तो भगवान की पूजा नित्य करनी है और नित्यम पुण्य श्रवा कथया पुण्याचा, और भगवान की कथाओं का सेवन भी नित्य करना है। तो 6 बातें जो है चार कुमार बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवद गीता में यह शब्द 2 बार आया है। भगवत प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में ये शब्द 2 बार आया है भगवान के लिए। कोई बता सकता है, योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्णो, अंतिम 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानि तिर्मतिर मम। एक तो ये है और दूसरा है योगेश्वर है 11वें अध्याय का 9वां श्लोक है, एवं मुक्त ततो राजन महायोगेश्वरो हरि है, दर्शयामास पार्थाय रूपम परमम ऐश्वरम। संजय, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। तो हरि जो महायोगेश्वर हैं, उन्होंने दर्शिया मास दिखाया पार्थाय अर्जुन को, परमम रूपम ऐश्वरम, अपना जो है ईश्वरीय परम रूप दिखलाया, तो महायोगेश्वर है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं दो बार आया है योगेश्वर शब्द, भगवद गीता में ये सब दो बार आया है। 18वें अध्याय 1878 में श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है। 1878 में यत्र योगेश्वर कृष्णो, हरि तो नहीं आया। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि 1878 में श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं। तो हरि तो नहीं आया, लेकिन 77वें श्लोक में हरि आया है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम रूपम अति अद्भुतम हरे, जिसमें वो मे महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। तो जो वो हरि शब्द जो है, हरि का अति अद्भुत रूप का स्मरण कर करके मुझे विस्मय हो रहा है, महान विस्मय हो रहा है, हृष्यामि चा मुहुर्मुहुर, और बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। तो वो हरि जो है प्रभुपाद 78वें श्लोक में निकाल रहे हैं, 78वें श्लोक में नहीं है, लेकिन 77वें श्लोक का जो हरि है वो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भगवान हरि कहा गया है, श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो। 6वें अध्याय के अंत में भी 647 योगेश्वर शब्द की व्याख्या समय युक्त तमो मता करके दी गई। तो भक्त के लिए प्रभुपाद कहते हैं, भक्त के लिए योगेश्वर शब्द की व्याख्या है, भक्त के लिए योगेश्वर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त के लिए भी योगेश्वर शब्द की व्याख्या की गई है भक्त के लिए। तो 647 कौन क्या श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि 6वें अध्याय के अंत में भी 647 योगेश्वर शब्द की व्याख्या समय युक्त तमो मता करके की गई है। समय युक्त तमो मता, तो योगियों में सबसे बड़ा योगी तो क्या हुआ, योगेश्वर। तो प्रभुपाद जो है भक्त के लिए भी योगेश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस व्याख्या के अनुसार। या भक्त के लिए हम योगीश्वर कह सकते हैं, योगियों में तो योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगीश्वर कह सकते हैं, और कृष्ण को योगेश्वर कह सकते हैं, समस्त योगों के ईश्वर हैं कृष्ण है, समस्त योगों के ईश्वर हैं, और योग कृष्ण की प्राप्ति के उपाय, तो कृष्ण की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं उनके ईश्वर कृष्ण हैं, नियंत्रित करने वाले ईश्वर कृष्ण हैं। तो कृष्ण को योगेश्वर कह सकते हैं और भक्त को योगीश्वर कह सकते हैं, योगियों में सबसे श्रेष्ठ है ना, तो ऐसा भी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है, क्या लिखा है, योगेश्वर उपासनया, योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। तो प्रभुपाद ये अर्थ ले रहे हैं, योगेश्वर की उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की उपासना करना है ना। तो कृष्ण भक्त को जो है योगेश्वर क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी योगी हैं, चाहे कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, तो वे सब जो है योग की सीढ़ी में मतलब कहीं ना कहीं 20 रास्ते में है, लेकिन जो भक्ति योगी है वो योग की सीढ़ी में सबसे ऊपर है, तो इसलिए वही योगेश्वर है क्योंकि वो सबसे ऊपर है और कृष्ण के सबसे अधिक निकट है ना। तो उसकी उपासना यानी वैष्णव की जो उपासना है, वैष्णव को योगेश्वर कहा जा सकता है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना, अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, यानी शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने भी भागवत 7:5-32 में कहा है, नैसा मतिस्तावत उरु क्रमांग्रेम इस प्रसिद्धि अनर्थाप गमो यदर्था महिषाम पादयजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। तो भगवान के चरण कमलों में जो मति है तो तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक कि महापुरुषों के चरण कमलों की धूल से अपने को स्नान ना कराएं, यानी अपने सिर में ना डालें। तो जब तक अपने सिर में महापुरुषों के चरणों की धूल ना डालें और स्नान ना करें तब तक भगवान के चरण कमलों में मति नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाए जो सदैव भक्ति में लगा रहता है और उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। तो योगेश्वर उसी को कहेंगे, योगेश्वर उसी को कहेंगे है? जो सदा योग में लगा रहता है, है? और कौन सा योग है? भक्ति योग। जो सदैव भक्ति में लगा रहता है उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता, केवल उसी की सेवा से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संतुति की गई है योगेश्वर उपासनया कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। तो ये प्रभुपाद जो है अर्थ निकाल रहे हैं, क्या सर्वोच्च भक्ति की सेवा का अर्थ क्या प्रभुपाद ने क्या अर्थ निकाला? श्रवण करना, उसके मुख से भगवान की महिमा का श्रवण करना। क्योंकि जो तीसरी पंक्ति है उसमें योगेश्वर उपासनया लिखा है और फिर लिखा है पुण्य श्रवा कथया पुण्य आचा, तो उसको प्रभुपाद जोड़ रहे हैं कि योगेश्वर की उपासना का अर्थ क्या है कि भगवान के पुण्य श्रवा यानी भगवान के पुण्य कथाओं को सुनना है ना। तो भक्तों शुद्ध भक्तों की सेवा का अर्थ यह है। तो उसमें सुनना भी है और साथ साथ दो बातें और भी हैं। गीता में भगवान ने कहा है ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणाम करना है, प्रश्न करना है, सेवा करना है, ठीक है ना। तो योगेश्वर की उपासना में जो है तीन चीजें हैं ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। हाँ, इसमें है पुण्य श्रवा कथया पुण्य आचा, यानी आप पवित्र हो जाते हैं, आपके कान पवित्र होते हैं और फिर आपका मन पवित्र होता है, आपकी बुद्धि पवित्र होती है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता 7:28 में भी कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मनुष्य भक्ति में नहीं जुड़ सकता। 7:28 कोई बता सकता? ये साम तुंद गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। ये साम तुंद गतम पापम, जिनके पाप अंतगत हो गए हैं, अंत को प्राप्त हो गए हैं, जिनके पाप का अंत हो गया है ना, मतलब पवित्र हो गया। तो पवित्रता का मतलब क्या है? जो पापों से मुक्त हो, है ना। तो कथया पुण्याचा, जो भगवान की कथा हम योगेश्वरों के मुख से सुनते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र हो जाते हैं तो फिर गीता में भगवान ने क्या कहा कि जिनके पाप अंतगत हो गए, समाप्त हो गए हैं, तो फिर जनानाम पुण्य कर्मणाम, उनके पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, तो वे द्वंद के मोह से मुक्त हो जाते हैं, सुख दुख सुख दुख रूपी द्वंद के मोह से मुक्त हो जाते हैं, और भजन्ते माम दृढ़ व्रता, और दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं, है ना। तो दृढ़ारति प्राप्त होती है, पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ारति प्राप्त होगी, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कलमस को पूरी तरह धोल डालना होता है। आगे भक्ति के कार्य में पहली बात है आदौ गुरुवाश्रयम। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य वृत्ति परक धर्म सद्धर्म परीक्षा के विषय में पूछताछ करे। हाँ, तो इसमें भी जो सदन श्रद्धया भगवत धर्मचर्या जिज्ञासया, तो जिज्ञासा किसकी करें? भगवत धर्म की जिज्ञासा करना है और श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा करना है। श्रद्धया भगवत धर्मचर्या जिज्ञासया, तो जिज्ञासा करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, चैलेंज के साथ नहीं, चुनौती पूर्वक नहीं जिज्ञासा करना, चुनौती पूर्वक जिज्ञासा नहीं करना है कि देखो मैं इनको निरुत्तर कर दूंगा, इनको जवाब नहीं मिलेगा, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि इनको जवाब ही नहीं मिलेगा, इस भावना से नहीं है, जिज्ञासा की भावना से कि आप जानना चाहते हैं, इस भावना से और श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासा करना है। तो प्रभुपाल लिखते हैं आदो गुरुवाश्रयम, गुरुवाश्रयम मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य वृत्ति परक धर्म सद्धर्म परीक्षा के विषय में पूछताछ करे। यहां पर है भगवत धर्मचर्या जिज्ञासया, पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों तथा भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करे। साधु मार्ग अनुगमनम, जो इसमें आया है आध्यात्मिक योग निष्ठया। रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में ये आदेश दिए गए हैं। आगे प्रभुपाल लिखते हैं निष्कर्ष ये निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती हैं तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक को जो है हिंदी में, हिंदी कविता में मनाया गया है, एक विष्णु प्रिया देवी हैं, शास्त्र और गुरु वचन में विश्वास रहे, ये क्या है श्रद्धा, फिर भगवत धर्म के अनुकूल जीवन में आचरण करे भगवत धर्मचर्या, फिर तत्व की जिज्ञासा हो, ये जिज्ञासा है, फिर ज्ञान योग में निष्ठा हो आध्यात्मिक योग निष्ठा, फिर श्री हरि की उपासना हो, इसमें क्या है योगेश्वर उपासना, तथा कथा श्रवण में प्रीति हो, पुण्य श्रवा कथया पुण्याचा। तो इस तरह से कि छह बातें हैं जिनमें कि भगवान जो है, क्षमा करिए, चार कुमार हैं, वो बता रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ारति कैसे प्राप्त होगी। अब एक जो विशेष बात है इसमें योगेश्वर की बात है, जिसमें प्रभुपाद काफ़ी तात्पर्य में लिखते हैं योगेश्वर। तो भगवान को योगेश्वर कहा गया है और भक्तों को भी योगेश्वर कहा गया है ना। तो योग का अर्थ जो है कई प्रकार से लिया जाता है। योग का अर्थ ऐसे भी लिया जाता है कि जो असंभव घटनाएं हैं उनको भी जो है संभव करें, तो वे भी जो है मतलब योग, ऐसे भी योग कहते हैं। और भगवान ऐसे योगों के ईश्वर हैं, भगवान ऐसे योगेश्वर है कि जो असंभव को भी संभव कर देते हैं, ऐसी घटनाएं बनाते हैं। तो मेरे जीवन में इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो कि भगवान के द्वारा हो रही हैं और असंभव घटनाओं को संभव बनाते हैं भगवान। तो मैं कुछ आपको इसका नमूना बताऊंगा और ये बड़े आश्चर्य की और बड़े हर्ष की बातें हैं कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं। अट्ठाईस अगस्त को हम जब पटना में गए थे तो एक स्थान है राजगिरी जहाँ भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया था। तो हमारी बहुत इच्छा थी उस स्थान का दर्शन करने की। तो सुनिए ये घटना जो है कैसी, मतलब आश्चर्य की, जो कि हम लोग सोच नहीं सकते कैसे घटनाएं भगवान जो है मतलब बनाते हैं। तो मैंने महाभारत की कथा पढ़कर सुनाई। चूंकि राजगिरी नामक स्थान पर पहुंचने में विलंब हो रहा था, अतः मैंने विचार किया कि उस स्थान की लीला का विस्तृत वर्णन जो महाभारत में है उसे उस स्थान पर सुनाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उस स्थान से पुनः एयरपोर्ट की ओर वापस जाना पड़ेगा, ताकि मैं पटना की उड़ान से दिल्ली पहुंचकर अगले दिवस की मंगल आरती में उपस्थित होने के अपने नियम की रक्षा कर सकूं। ऐसी स्थिति में मैं उस स्थान की लीला का वर्णन उस गाड़ी में बैठे हुए अपने संगियों को सुनाने लगा, जो गाड़ी राजगिरी की ओर जा रही थी। अब कथा के बीच में मैंने इस बात पर जोर दिया कि समझने की बात है कि जरासंध ने इस स्थान पर 20,800 राजाओं को पर्वत की गुफा के अंदर अत्यंत कठिनाई की स्थिति में रखा हुआ था। सुन रहे आप ध्यान से, ये बात तो मैंने अपने संगियों से कही, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर हजारों पिंजरे रखे हुए थे, जिनमें से एक एक पिंजरे के अंदर अनेक मुर्गे अत्यंत कठिनाई की स्थिति में बंद किए हुए थे। ये दृश्य तो उस समय दिखाई दिया, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने 20,800 राजाओं को बंदी बनाने की बात बतलाई, ठीक उसी समय एक स्थान पर हजारों पिंजरे दिखाई दिए, जिनमें से एक एक पिंजरे में अनेक मुर्गे अत्यंत कठिनाई की स्थिति में बंद किए गए थे। इस घटना के द्वारा श्री कृष्ण ने इस बात को दो प्रकार से पुष्ट किया। पहली बात तो ये है कि विचार करने की बात है कि जिस प्रकार इस स्थान में मुर्गों को अत्यंत कठिनाई की स्थिति में रखा गया था, ठीक उसी प्रकार जरासंध ने अत्यंत अन्यायपूर्वक उन राजाओं को अत्यंत कठिनाई की स्थिति में रखा था। सामान्यतया यह देखा जाता है कि यदि कोई सम्मानित व्यक्ति होता है तो उसे यदि सरकार बंदी बनाती है तो उसे प्रथम श्रेणी की जेल में रखती है, जहां वो अत्यंत सम्मानपूर्वक तथा अनेक सुविधाओं के साथ रखा जाता है। परंतु जरासंध का एक कितना बड़ा अन्याय था कि उसने निरपराध राजाओं को ऐसी स्थिति में रखा हुआ था जैसी स्थिति में इस स्थान पर मुर्गे बंद किए गए थे। अब दूसरी बात विचार करने की यह है कि जिस प्रकार इस स्थान पर मुर्गे इसलिए बंद किए गए थे कि इन मुर्गों की अंत में हत्या की जाएगी, उसी प्रकार जरासंध ने यह निश्चय किया था कि उस शिवजी की पूजा के नाम पर इन राजाओं की हत्या करेगा। श्री कृष्ण इस घटना के द्वारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत दिया वो ये था कि जरासंध सोचता था कि वो इन राजाओं की हत्या करके शिव जी को प्रसन्न करेगा, परंतु ये उसका बहाना था कि वो इन राजाओं की हत्या के रूप में शिव जी की पूजा करके शिव जी को प्रसन्न करेगा। वास्तव में जरासंध उन राजाओं की उसी प्रकार हत्या करना चाहता था जिस प्रकार इस स्थान पर बंद किए हुए मुर्गों की हत्या की जाएगी। श्री कृष्ण के द्वारा की हुई ऐसी अद्भुत संकेत पूर्ण लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। कितना आश्चर्य, हरि बोल। फिर एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैं राजगिरी के स्थान का दर्शन करके गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर जा रहा था तथा उसी समय मैं अपने संगियों को जरासंध के संबंध में कथा भी सुना रहा था। अब मैंने कथा में से एक बात ये पढ़कर सुनाई कि जरासंध अतिथियों का अत्यंत प्रेमी था। ये बात तो मैंने कथा के अंदर से पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर अत्यंत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था राजगिरी अतिथि गृह। आश्चर्य। और गाड़ी चलती जा रही है, हम लोग सोच नहीं सकते कैसे घटना का क्रम हो रहा है। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने कथा के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि जरासंध अतिथियों का अत्यंत प्रेमी था, ठीक उसी समय तथा उसी स्थान पर यह लिखा हुआ दिखाई दिया राजगिरी अतिथि गृह। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब है एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैं चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए कथा सुना रहा था। अब प्रभु, मैंने कथा के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि जरासंध तथा भीमसेन के बाहुयुद्ध को देखकर मगध देश के निवासीगण अत्यंत भयभीत हो गए। ये बात तो मैंने कथा के अंदर से पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर अत्यंत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मगध। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय कथा के अंदर से मगध शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक उसी समय तथा उसी स्थान पर मगध शब्द लिखा हुआ था। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटना को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने कथा के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण ने जरासंध को मार डालने के लिए भीमसेन को प्रोत्साहन देते हुए कहा, भीमसेन तुम जरासंध का वध कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वायुदेव का दिया हुआ विशेष बल है। ये बात तो मैंने कथा के अंदर से पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर एक असाधारण बलशाली व्यक्ति का चित्र बना हुआ था। एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिसमें कथा के अंदर से मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि भीमसेन के अंदर असाधारण बल है, ठीक उसी समय एक असाधारण बलशाली व्यक्ति का चित्र दिखाई दिया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, मैंने कथा में पढ़कर सुनाया कि भीमसेन ने जरासंध के शरीर को दो टुकड़ों में इस प्रकार चीर दिया कि प्रत्येक टुकड़े में एक पैर, एक हाथ तथा एक आंख थी। ये बात तो मैंने कथा के अंदर से पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय गाड़ी एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर एक ऐसी दिशा में एक पहलवान का चित्र बना हुआ था जिसमें उस पहलवान का एक पैर, एक हाथ तथा एक आंख ही दिखाई दे रहे थे। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि मैंने जिस समय कथा के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि भीमसेन ने जरासंध के शरीर के दो टुकड़े इस प्रकार किए कि प्रत्येक टुकड़े में एक हाथ, एक पैर तथा एक आंख थी, ठीक उसी समय एक पहलवान का ऐसी दिशा में एक चित्र दिखाई दिया जिसमें उसका एक हाथ, एक पैर तथा एक आंख ही दिखाई पड़ रही थी। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटनाएं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जो हो रही हैं, और ये विशेष ये भगवान ने योग बनाया कि ये श्लोक मुझे मिला है जिसमें योगेश्वर शब्द आया। ये योगेश्वर शब्द पहले किसी ने नहीं सोचा था और ये मुझे मिलने वाला था, ये भी आज मेरा प्रवचन नहीं था। तो ये सब जो है भगवान की एक अद्भुत लीलाएं हैं। तो हम अगर देखना चाहें तो इस तरह से भगवान की कृपा देख सकते हैं। तो आप लोगों की ओर से अब कोई प्रश्न है या कोई चर्चा या मैं प्रश्न करूँ?
महापुरुष के बारे में हरे कृष्णा जैसे तात्पर्य में महापुरुष के बारे में बात आई उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु का दर्शन खुला। वैसे महापुरुष वे भी हैं श्री भक्तिस्थान सरदी ठाकुर, पर चूंकि अजानुलंबित कि उनके हाथ महापुरुषों के पैर के नीचे तक जाते हैं,
घुटने तक महापुरुष।
महापुरुष भगवान को भी कह सकते हैं कि उनके हाथ। वैसे तो भगवद्गीता के अनुसार महापुरुष वो भी है जो भक्ति योगी, भगवद्गीता में भक्ति योगी महापुरुष शब्द आए, ना कि हाथ पैर लंबे हो किसी के उसको महापुरुष, वो तो है ही महापुरुष, पर जो भक्ति योग का आचरण करते हैं वो भी महापुरुष। ये योग तो अभी मेरे सामने आपके सामने हर बार घट रहे
हैं।
और भी मैं कुछ बता सकता हूँ बहुत ही एक मिनट के दो मिनट के लिए, कि जिससे कि और विश्वास बढ़ेगा भगवान की कथाओं में। कि एक बार इंटरनेट पर नहीं लैपटॉप में प्रभु जी का गौड़ कथा का जो है ना डीवीडी डाला हुआ था, वीडियो डीवीडी, तो मैं उसको देखना चाहता था क्योंकि मेरा इतना अभ्यास नहीं है, वो दूसरे फॉर्मेट में हो गया तो मुझसे चल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैं 15 मिनट तक लगभग प्रयास कर रहा था, रात के 11 बज रहे थे उस वक्त, तो उस समय जो है वो नहीं चला। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो प्रभु जी अब दिखाई नहीं देंगे, वैसे मैं ऑडियो ही सुनता हूँ कभी कभी, तो वीडियो की इच्छा हुई थी नहीं चला। तो मैंने ये सोच के उसको ठीक है कोई बात नहीं ऑडियो ही प्रवचन सुनेंगे, उसमें प्रभु जी नहीं दिखाई देंगे कम से कम सुनाई देंगे, ऐसा सोच के मैंने उसको खोला और जितने सारे ऑडियो प्रवचन थे उसमें से एक प्रवचन पे क्लिक किया और भी बीच के बिंदु से चलाया तो सीधा उसमें ये बात निकली कि उस वक्त कंस को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे पर सुनाई पड़ रहे थे, आकाशवाणी में भगवान दिखाई नहीं दे रहे पर सुनाई दे रहे थे, बिल्कुल एकदम उसी पॉइंट पे, ये नहीं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो कितना आश्चर्य। और एक मैं बताऊंगा कि एक बार जो मंदिर का डेकोरेशन होता था फेस्टिवल पे, उस वक्त मंदिर का डेकोरेशन चल रहा था और मैं 11:15 बजे मंदिर में आया और माला कर रहा था, माला तो मेरी बहुत धीरे होती है, वैसे आप लोग आशीर्वाद देंगे तो स्पीड हो सकती है, तो मैं माला कर रहा था साथ में प्रभु जी का प्रवचन भी ये वाला लगा के सुन रहा था धीरे से। और उस वक्त जो है मेरे मन में बहुत पूर्व पहले की बात याद आई फूलों को देख के, कि जब शास्त्रों में बताया जब भगवान हंसते हैं तब फूल खिलते हैं, तो जैसे ही मेरे बात ये मन में आई कि भगवान जब हंसते हैं फूल खिलते हैं उसी वक्त इसमें ये शब्द आए हंसे हंसे सब सुनाई पड़ा ना मैंने फिर बैक किया पीछे तो उसमें यह था सराबी को देख के चेतन महाप्रभु हंसे तो भगवान पुष्टि करते हैं हाँ मेरे द्वारा मतलब जब मैं हंसता हूँ तो फूल खिलते इतने लाखों प्रकार के फूल हैं बहुत सारी घटनाएं बहुत तो हरे कृष्ण
आपने बताया कि जगत में जो भक्ति किए थे उनका सबका उद्धार हो गया तो हम ये जानना चाहते हैं लोगों का क्या हुआ
क्या प्रश्न
आपने बताया कि जगत में जितने भक्ति बनाए थे उनका सबका उद्धार हो गया भगवान ने उनकी शादी कर ली लेकिन जो मुर्गे थे उनका क्या हुआ मुर्गों का
आपका प्रश्न है कि जरासंध ने जो बंदी बनाए उनका उद्धार हो गया भगवान ने नहीं यहाँ पर जो विशेष घटना है वो ये है कि एक उदाहरण मतलब भगवान ने संकेत दिया कि राजाओं के साथ कितना न्याय हो रहा था ना राजाओं के साथ कितना न्याय हो रहा था तो मुर्गों को किस तरह से मतलब असुविधा पूर्वक उनको बंद किया पिंजड़े के अंदर ऐसे पर्वत की गुफा के अंदर राजाओं को बंद किया और वो भी VIP लोग हैं राजा लोग कितने जिनका अभिषेक हुआ राजा के पद पर अभिषेक हुआ और उनको जो है कितनी बुरी हालत में रखा तो एक तो ये और दूसरा उनकी हत्या भी करना है अंत में तो ये जो ये संकेत है ये कितना पूर्ण है भगवान कि मतलब ऐसा दृश्य जो है उसी समय दिखाई दिया जब गाड़ी चल रही है और मैं कथा पढ़ रहा हूँ उसी समय जो है ये तो ये एक आश्चर्य की बात है ठीक है
वो जो पिंजरे भी थे ना बहुत बड़े बड़े थे मतलब 100-200 फीट लंबे वो फॉर्म हाउस ही था हमने तो कभी नहीं देखा पर जिस वक्त प्रभु जी के ये शब्द निकले तभी मतलब वो दिखाई दिए थे
मोहन श्याम
और योगेश्वर का उदाहरण बता रहे हैं जिस तरह से अमृत महाराज था कि जब दुर्वासा मुनि जो बहुत बड़े योगी थे लेकिन अमृत महाराज के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि फिर भी नहीं होने के बावजूद भी दुर्वासा मुनि से जो है
बहुत अच्छा धन्यवाद तो उन्होंने जो बताया है कि अम्बरीश महाराज इतने बड़े हैं मतलब योगी हैं तो दुर्वासा मुनि के पास कितनी योग सिद्धियाँ थीं और बहुत बड़े योगी थे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से वो जो है पराजित हो गए हैं क्योंकि भक्त जो है योगेश्वर क्योंकि योगेश्वर भगवान कृष्ण ही उसके बस में है तो वो जो है कितना बड़ा योगेश्वर है ना तो भक्ति के द्वारा आप भगवान योगेश्वर को बस में कर सकते हैं तो आप कितने बड़े योगेश्वर हो गए है ना तो ये विशेष बात हाँ जो भक्त है तो उसके पास सिद्धियां नहीं होती योग सिद्धियां उसके पास नहीं होती है अणिमा महिमा ये सब सिद्धियां उसके पास नहीं होती हैं जैसी आवश्यकता होती है तो भगवान ही जो है उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है कि योगी के पास सिद्धियां होती हैं तो उनके द्वारा वो जो है गिर सकता है वो कभी भी गिर सकता है तो बहुत खतरे में है लेकिन भक्त बहुत सुरक्षित है क्योंकि उसके पास योग सिद्धियां कुछ नहीं होती हैं जैसी आवश्यकता होती है वैसी भगवान उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो वो ज्यादा सुरक्षित है ना
बताया कि एक बच्चे का उदाहरण है छोटा बच्चा होता है वो अपनी सुरक्षा के लिए कौन सी चीज नहीं होता अपने पिता पे निर्भर करता तो इसलिए वो बहुत सुरक्षित होता है इसलिए अपनी सुरक्षा के स्वयं के लिए नहीं होता है वो भगवान पे निर्भर रहता है इसलिए अपनी सुरक्षा
आश्रित ठीक है और कोई हाँ जी चालू है चल श्रद्धा हाँ श्रद्धा हाँ
श्रद्धा
इसका मतलब है कि आपको अभ्यास करना है आपके अंदर श्रद्धा नहीं है लेकिन आपको श्रद्धा का अभ्यास करना है आपको जो है अगर विश्वास नहीं भी है तो भी आपको धैर्य का पालन करना है और आपको बुद्धि से इससे श्रद्धा का अभ्यास करना है आपके मन में बहुत संशय हैं लेकिन आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि ये चूंकि शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्र अपौरुषेय हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए नहीं हैं, तो इनमें जो बातें लिखी हैं ये मेरे कल्याण के लिए हैं, तो इसको भी श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, आपको जो है विश्वास नहीं है लेकिन तो भी आप टिकट ले रहे हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं और आपको श्रद्धा होती है कि भाई ये टिकट जो है आपको वहाँ ले जाएगा, जहाँ का टिकट है वहाँ ले जाएगा। तो इस तरह से आपको श्रद्धा के बिना तो काम चलता नहीं, हर जगह आपको श्रद्धा करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, संशय भी रहता है लेकिन साथ साथ आपको श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो कई मामलों में आप रास्ता पूछते हैं किसी से, वो कोई रास्ता गलत भी बता सकता है, आपको जाना है कनाट प्लेस जाना है, कोई बताता है तो गलत भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई हो सकता है कि सही हो। ठीक है ना, तो कई मामलों में आपका काम श्रद्धा के बिना चलता नहीं है। तो इसी प्रकार से आपके अंदर अगर संशय हैं भी शास्त्रों के प्रति, तो भी आपको सोचना चाहिए कि इतने महान आचार्य हैं वो भी इस रास्ते में चल रहे हैं, और जो है ये शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, ये अनुमोदन कर रहे हैं, तो चलो ट्राई करो, चलो इसकी परीक्षा कर लो, करके देख लें। ठीक है ना, तो इसको श्रद्धा कहते हैं। तो इसका अभ्यास करना है आपको, आपके अंदर नहीं भी है श्रद्धा, कुछ संशय भी हैं, लेकिन तो भी आपको जो है श्रद्धा का अभ्यास करना है। ठीक है ना, और कोई? हाँ जी,
पिछले महीने में यहाँ पर आया था मंदिर में प्रभु जी से मिलने के लिए,